तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जमाना था अपने घर में, फिर उसके बाद जो उन्होंने उनकी जो कुएं के अंदर उनको एक जगह पे भाइयों ने डाल दिया कुएं में, उसके बाद जैसे काफला उनको लेकर आया और शहर में लाके बेचा मिस्र में, फिर मिस्र के बाजार में अजीज मिस्र ने जो बड़ा मिनिस्टर था उसने उनको खरीदा, जो उनका पीरियड गुजरा अजीज मिस्र के घर में, किस तरह उन्होंने वहाँ पे चीज़ों को देखा और सीखा और वो इल्म उनको हासिल हुआ जो कि बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े हुक्मरान जो होते हैं उनके घरों में फाइनेंसिस का भी इल्म और ये सब चीज़ का, क्योंकि वो बंदा भी एक मिनिस्टर था जिसके घर में ये रहते थे। और फिर वहाँ पे किस तरह अल्लाह ताला ने उनको एक आजमाइश में डाला और वो आजमाइश उनकी एक औरत की आजमाइश थी, और एक नौजवान के लिए औरत का फितना बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और उनका किरदार था कि वो उससे निकल आए, और फिर उनका जेल का ज़माना आपने देखा कि कैसे गुजरा, और वहाँ पे भी ताबीर जो उन्होंने ख्वाब की ताबीर की और वैसे ही सच हो गई, और उसके बाद वो दो कैदी हैं जिनको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी, उनमें से एक बादशाह का साकी था, और जब बादशाह को ख्वाब आया तो साकी उस बादशाह का ख्वाब लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया, और जब उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उसने उनको वहाँ से निकालने का हुक्म दिया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकलने से इनकार कर दिया कि जब तक उनकी पाक दामनी जाहिर ना हो जाए। और उसके बाद जब वो बरी हो गए तो बादशाह ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, अजीज़े मिस्र बना दिया, और तमाम खजाने इनके हाथ में दे दिए। और हमने देखा कि यहाँ पर आयत नंबर जो शुरू में पारे के हमने पढ़ी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयत नंबर 55 में कि आप मुझे बना दें यहाँ पे इस इन खजानों के ऊपर अपने, यानी अपना मिनिस्टर बना लें, तो क्या ये जायज़ है कि किसी से एक मनसब तलब किया जाए? तो हमारे दीन में इसकी ममानियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमारत का सवाल ना करना, क्योंकि अगर तुम सवाल की वजह से अमारत दे दिए गए तो तुमको उसके सपुर्द कर दिया जाएगा, अगर तुमको बगैर सवाल के अमारत दी गई तो इसमें तुम्हारी मदद की जाएगी। यानी आप अगर मांग के कोई ओहदा लेते हैं तो अल्लाह ताला उसके हवाले कर देता है, फिर मदद नहीं आती, और जब अल्लाह ताला आपको दे कोई ओहदा तो फिर अल्लाह की मदद साथ होती है। इसी तरह एक और हदीस में आया बुखारी और मुस्लिम की, वो भी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी मनसब का इरादा करेगा हम उसको हरगिज उस मनसब पर मुकर्रर नहीं करेंगे। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि मुझे दे दें ये, तो फिर क्यों? तो असल में ये है कि वो तो नबी थे, और नबी का तकवा तो यकीन ही होता है, कोई और ऐसा तकवा नहीं रखता। इसी तरह बास मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब कोई किसी मनसब का अहल ना हो तो जो शख्स अहल हो उसको चाहिए कि वो आगे बढ़ के वो कह दे कि मैं ये खिदमत सर अंजाम दे सकती हूँ। यानी आप देखते हैं कोई भी ये काम नहीं जानता, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, तो मैं इसका अहल हूँ और इस वक्त ज़रूरत है तो इस वजह से कर लें। अब इसी के ऊपर आप ये देख लें कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस के सिस्टम होते हैं उसमें उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और फिर इतना पैसा खर्च करते हैं और फिर उसके बाद अपने मुखालिफ पे इतना कीचड़ उछालते हैं, उनकी इतनी किरदार कुशी करते हैं, उनके ऊपर तोहमतें लगाते हैं, और ये सब इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है। अब हर एक को ये नहीं कह सकता हाँ जी मेरी ही ज़रूरत है, मैं ही कर सकता हूँ और कोई और इसके अहल है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे ही अहल हो, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आज का जो सबक लेने लगे हैं इसके अंदर अब हम देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब उस मनसब पे फायज हो चुके हैं और उनके पास सारा इख्तियार है। अब वो गल्ला काश्त कराना, उसको जमा करना, और 7 साल इसके अंदर गुजर गए और अब वो वाले 7 साल आ गए हैं जैसे कि बादशाह ने ख्वाब देखा था, जिसमें कहत शुरू हो गया। और ये कहत इतना शदीद था कि ना सिर्फ ये कि मिस्र में था बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों में भी फैल गया था, और लोग वहां से दूर दूर से उनको पता चलता था कि कोई एक बादशाह है मिस्र में, वो जो है वो गल्ला देता है और वहां पे गल्ले की फरावानी है, वहां पे गल्ला मौजूद है और बादशाह बड़ा रहम दिल है तो वो लोगों को भी दे रहा है। तो जैसे वो थी ना, एक आगे से आगे बात चलती जाती, लोगों को पता चलता जाता है, तो इसी तरह उन लोगों को यहाँ तक भी पता चल गया, फलस्तीन तक भी, और फलस्तीन में भी कहत पड़ा हुआ था। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बेटों से फरमाया कि आप लोग जाओ और आप गल्ला लेकर आओ, क्योंकि इतनी ज्यादा भूख हो गई थी। ठीक है, तो अब उन्होंने चूंकि उनको पहले भी एक तजर्बा हो चुका था, तो याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को नहीं जाने देते थे अपने बाकी बेटों के साथ, तो वो जो 10 बेटे थे वो ही मिस्र की तरफ रवाना हुए। और अब ये वो जो बात थी ना, हम इसी सूरत में आयत नंबर 15 में पढ़ चुके हैं, जिसमें आया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम जरूर इनको इस बात से आगाह करोगे, उस वक्त उनको नहीं पता होगा लेकिन तुम इनको आगाह करोगे जो ये आज कर रहे हैं, इस काम का तुम पता दोगे। तो वो ही अब यहाँ पे हुआ कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वजा इख्वतु यूसुफ, और आए भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के, फदखलु अलैहि, तो वो दाखिल हुए उस पर, फआरफहुम, तो उसने पहचान लिया उनको, वहुम लहुम उनके रून, और लेकिन वो नहीं पहचान सके, वो इनकार करने वाले थे। मतलब यानी क्या मतलब, यानी वो मुनकर थे, यानी उनकी पहचान में नहीं आए, वो अनजान थे, ना वाकिफ थे वो। अब ऐसा क्यों हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहचान गए और वो क्यों नहीं पहचाने? एक तो बात देखें इसमें यह है कि वो लोग तो उस वक्त भी जवान थे, बड़े थे, जिस वक्त के वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के लिए गए थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 7-8 साल होगी। अब इतना छोटा बच्चा, और अब वो 40 साल के तकरीबन हो चुके हैं, इतना जमाना गुजर चुका है, अब 7 साल देखें, ये जो जिसमें कल्ले की फरमानी थी उससे पहले तकरीबन 9 साल जेल में, उससे पहले अजीज मिस्र के घर जब वो एक यानी छोटे बच्चे से जवान हुए, तो कितना जमाना गुजर गया है ना। अब इसमें एक बच्चा जहां वो इतना बड़ा आदमी बन जाए दाढ़ी मूछों वाला, तो वो कहाँ वो पहचाना जाता है। और दूसरी बात ये कि वो तो ख्वाबो ख्याल में भी सोच नहीं सकते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे होंगे। और तीसरी बात ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हाल हुलिया, जो उनका शाहाना लिबास, कहाँ वो वहां पे छोटे से बच्चे कैसे भी लिबास में होंगे, और यहाँ पे एक यानी बादशाहों वाला ठाट बाट तख्त पे बैठे हुए हैं, शाही लिबास है, और जो इंटरप्रेटर भी यूज कर रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम बात करने में, तो वो भी बीच में बात करता था, इंटरप्रेट करता था, क्योंकि इनकी जुबान तो इब्रानी थी, बॉम्बे मिस्र में और जुबान थी। तो यानी कोई भी ऐसी क्लू नहीं था जिससे वो कहीं पहचान सकते कि ये वही हमारा भाई है जिसको हम कुएं में डाल आए थे, किसी तरह भी नहीं। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जाहिर है उस वक्त की मेमोरी भी थी, और दूसरे ये कि ये भाइयों को तो जब आप बड़े हो जाते हैं इतनी ज्यादा तो शक्लें नहीं बदलती। तो अब ये निकले हैं अपने घर से और यहाँ पे पहुंचे हैं, और क्योंकि इनकी यहाँ की शोहरत भी बहुत आम हो गई थी कि इनके पास गल्ला भी है और ये कीमत पे दे भी रहे हैं, ठीक है, और ये भी कि ये रहम दिल हैं। तो अब यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहचान नहीं सके क्योंकि इतना जमाना गुजर चुका था। वलम्मा जहाज़हुम भी जहाज़ीहिम, तो उसने तैयार किया उनको साथ उनके सामान के, उनका सामान जब तैयार करने लगे, काला बोले, इतूनी भी अखिल लकुम, मेरे पास ले आना अपने भाई को। मिन अभी कुम, तुम्हारे बाप से। अब उनको कैसे पता चला, ये किसने कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अब उनको कैसे पता चला? तो उनसे उन्होंने वैसे सवाल जवाब किए कि भाई आप कहाँ से आए। उन्होंने कहा भाई हम मिस्र से आए हैं, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा हमारे मुल्क में बड़ा कहत पड़ गया था और आपकी हमने बड़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए हम गल्ला लेने आए। फिर उन्होंने पूछा कि हमें ये कैसे पता है कि तुम सच बोल रहे हो और तुम किसी दुश्मन के जासूस नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं, हम तो ऐसे बिलखरगिज नहीं, माज अल्लाह, हम तो अल्लाह के रसूल याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो कनान में रहते हैं। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे इस तरह सवाल करते रहे ना। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बाप के और भी कोई औलाद है तुम्हारे सिपा? उन्होंने कहा हाँ, हम 12 भाई हैं, उनमें से एक छोटा भाई जंगल में गुम हो गया और हमारे वालिद उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। उसके बाद उसका जो छोटा भाई था उससे ज्यादा मोहब्बत करने लगे और इस वक्त भी वो, हम इसलिए नहीं उसको साथ लेकर आए कि वो उनके पास उनकी खिदमत कर रहा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसके बाद हुक्म दिया कि इनको शाही मेहमान की हैसियत से ठहराया जाए और इनको जो जिस तरह से उनके रूल्स थे उसके मुताबिक, कायदे के मुताबिक गल्ला दिया जाए। अब ये बात थी ना कि हर एक बंदे को एक ऊंट के बराबर गल्ला दिया जाता था, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता था, क्योंकि जाहिर है राशनिंग होती होगी ना। ऐसे थोड़ी कि जो कोई कितना भी ले जाए। इस वक्त तो बड़ी, जैसे जब कोई चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो राशन कार्ड से भी चीजें दी जाती हैं और राशनिंग की जाती है कि इतना एक घर को मिलेगा। इसी तरह वो था कि एक आदमी को एक ऊंट के बराबर मिलेगा। तो उन्होंने फिर कहा कि अब अगली दफा अपने भाई को भी साथ लेके आना। अब तुम कह रहे हो ना तुम्हारे पास तुम्हारा एक भाई भी है, तो तुम उसको भी लेकर आना कि और भी गल्ला मिल सके। अला तरउना अन्नी उफिल कई, क्या तुम देखते नहीं कि मैं पूरा पूरा देता हूं पैमाना? तो एक लोड कैमल एक आदमी के लिए पर पर्सन है, तो वो आएगा तो तुम्हें और ज्यादा मिल जाएगा। और बाज तफसीरों में ये भी लिखा है कि उन्होंने ये मांगा कि हमारे भाई के लिए भी दे दें, वो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगली दफा उसको लेकर आना भाई को। उसको क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने कहा वो हमारे बाप के पास है, हमारा बाप बूढ़ा है। तो उन्होंने कहा चलो बाप को नहीं लेकर आते लेकिन भाई को तो लाओ। और आप खुद सोचें ये कितनी बड़ी फैमिली होगी कि 11 भाई हैं, ठीक है, 11 भाई, और वहां पे तो एक से ज्यादा शादियां होती थी, तो किसी की 3-4 बीवियां हैं, फिर बच्चे उनके आगे, तो ये कितना बड़ा खानदान होगा। तो अना खैरुल मुंसिलीन, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूं। अरे यहां से आपको पैगंबरों की एक सिफत पता चलती है कि उनके अंदर कितनी मेहमान नवाजी होती है। यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम की पता चली, इससे पहले किसकी आपने देखी है मेहमान नवाजी? इससे पहले किसके बारे में पढ़ा है आपने मेहमान नवाजी के, उसके बारे में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ना, जब वो भुना हुआ बछड़ा ले आए थे। पिछली सूरत के अंदर हम ये बात पढ़ चुके हैं। और नबी अलैहिस्सलाम भी बेहद मेहमान नवाज थे, इसीलिए हमें भी ये तलकीन की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और ये भी फरमाया है कि जो भी आप बेस्ट कर सकें, जो सबसे अच्छा है, जो पहले दिन का खाना है वो सबसे अच्छा किया जाए, सबसे अच्छा इतमाम किया जाए। उसके बाद 3 दिन मेहमान नवाजी के होते हैं, 3 दिन तक आप यानी उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, उसके बाद का जो होगा 3 दिन के बाद का वो सदका है, वो भी एहसान है कि अगर कोई करता है, ठीक है। तो इसलिए मेहमान नवाजी की बेहद अहमियत है और हमें भी चाहिए कि हम जो हमारे मेहमान हमारे आए हम उनके साथ बेहतरीन सलूक करें और इस चीज़ को बुरा ना जाने के हाय अब मेहमान आ रहे हैं और हाय मुसीबत और ये। और मेहमानों को भी ये बताया गया कि 3 दिन से ज़्यादा बेहतर है कि कहीं ना रहा जाए, अनलेस ये कि जैसे हम अपने मुल्कों में जाते हैं बैक होम अपने पेरेंट्स का, तो महीनों महीनों रहते हैं, वो तो ठीक है क्योंकि आप इतनी दूर से आए होते हैं, लेकिन अदरवाइज वैसे कहीं आप जाएं तो 3 दिन से ज़्यादा मेहमान बनना किसी के घर वो बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि आप उसको भी फिर एक तकलीफ में डाल देते हैं। इसीलिए तो कहा ना मेहमान नवाजी 3 दिन है बस, ठीक है, अनलेस ये कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी मजबूरी है या दूसरा ऐसा मजबूर करता है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन वरना इंसान ऐसे प्रोग्राम ना बनाए कि दूसरों को वो मुश्किल में डाले और वो भी एक मुश्किल समझे कि मेरे भी ये एक जहमत हो गई। तो मेहमान नवाजी पैगंबरों का शेवा है, पैगंबरों की सिफत है और हमें भी इस चीज की तरगीब दी गई है। और कभी ये ना सोचें कि जो मेहमान आता है वो हमारे खाने में से खा लेगा या हमारे खाने में कमी हो जाएगी। वो अपना रिस्क को खुद लेकर आता है, वो उसी का रिस्क था जो अल्लाह ताला ने आपके पास रख दिया और आपने उसी का रिस्क उसको दे दिया और अजर भी ले लिया। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसने आपके खाने से छीन लिया, हमारे इतने पैसे खर्च हो गए, हमारा इतना मतलब हमें इतना करना पड़ा। नहीं, वो अपना रिस्क को खुद लाता है। ठीक है, तो फरमाया कि मैं तो बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। ये किस लिए बता रहे हैं उनको? ताकि वो उनको एक इंसेंटिव मिले कि अच्छा, हम दोबारा भाई को लेकर आएंगे तो हमारे लिए और ज्यादा खाना पीना भी मिलेगा, गल्ला भी मिलेगा। और देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमारे साथ तो बड़ा अच्छी भलाई की है, तो ये कितनी मेहमान नवाज हैं। तो इसलिए वो उनको कोई डर ना हो। फइल्लम तअतूनी बिही, फिर अगर ना तुम लाए इसको मेरे पास, फला कैला लकुम, तो तुम्हारे लिए कोई पैमाना नहीं, कोई गल्ला नहीं, आइंदी मेरे पास, फला तकरबून, और ना तुम मेरे करीब भी आना। यानी एक तरफ उनको तरगीब भी दी है और तरहीब भी है, यानी एक तरफ उनको इस चीज का शौक भी दिलाया कि तुम लेकर आना, फिर देखना तुम्हें पूरा पूरा मैं पैमाना देता हूँ, और देखो मैंने कितनी अच्छी मेहमान नवाजी की है, तो तुम उसको लेकर आना जरूर। और फिर दूसरी तरफ उनको डराया भी, अगर तुम ना लेकर आए तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे दाखिल भी नहीं हो सकते। कालू सनुराविदु अन हु अबा हु, उन्होंने कहा अन करीब हम कायल कर लेंगे, हम कन्विंस कर लेंगे उसके बारे में अपने बाप को, उसके बाप को, अबा हु उसके बाप को कन्विंस कर लेंगे। क्योंकि वो जानते थे कि बिन्यामीन से बहुत मोहब्बत है याकूब अलैहिस्सलाम को, तो हम उनको कायल कर लेंगे। लेकिन कहते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम उनको कन्विंस कर लेंगे, वह इन्ना लफाइलून, और अलबत्ता हम करने वाले हैं, आप फिक्र ही ना करें, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कोई ना कोई 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 बात, कोई तरीका निकाल ही लेंगे। यानी बड़े वो श्योरिटी से कह रहे हैं, उनको पता है पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में भी उन्होंने बाप को कैसा मजबूर कर देता। वालदैन अक्सर अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो जाते हैं, जो काम वो नहीं भी करना चाहते, लेकिन बच्चे जब इस कदर जिद पे आ जाते हैं तो माँ बाप फिर अपने हथियार डाल देते हैं, फिर और उनके सामने वो क्या करें। तो अक्सर ऐसा होता है कि वालदैन की नहीं चल पाती औलाद के आगे। अगर वो कोई नाजायज काम है फिर तो कभी भी नहीं मानना चाहिए, अगर कोई जायज काम है तो फिर कोई उस चीज का जवाज मिल सकता है, कोई चांस हो सकता है कि आप अगर वो जायज बात कह रहे हैं तो उनकी मान ले तो कोई हर्ज नहीं है। और पहले भी याकूब अलैहिस्सलाम ने मान ली थी इनकी बात, और अब फिर वो कह रहे हैं कि अब हम फिक्र ना करें, हम लेकर आएंगे भाई को। वकाल अली फितियानी ही, और कहा उसने अपने गुलामों को, किसने? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। इजालू, रख दो बिदातहुम, उनकी पूंजी को, उनकी जो उन्होंने प्राइस पे की है ना, उस वक्त चांदी के दिरहम होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, वो प्राइस पे करते थे, तो प्राइस पे दिया जा रहा था। इस वक्त तो पैसों पे भी मिल जाना गल्ला बहुत बड़ी बात थी। देखिए, ये जो हम सोचते हैं ना, हम अल्लाह का शुक्र है और बहुत इस पे शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन शायद कभी हमारी इस पे तवज्जो नहीं गई। वो ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पैसे लेकर जाते हैं बाजार में और वहां से ग्रोसरी खरीद के ले आते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी आपने ये सोचा कि आपके पास पैसों का ढेर भी हो लेकिन ग्रोसरी ही ना हो अवेलेबल, कुछ मार्केट में कोई गल्ला ही ना हो, तो क्या करेंगे? हम सोचते हैं ना, मेरे पास पैसे हैं मैं जो मर्जी खरीद लूं, मेरे पास पैसे हैं अब मैं जो मर्जी जाके ले आऊं, जितना मर्जी लाऊं और उसको लाके वेस्ट भी करूं और उसको लाके फेंकूं और इधर करूं और गले सड़े जो मर्जी हो, तो क्या फर्क पड़ता है, और ले आएंगे। लेकिन कभी आपने इस नेमत का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पैसे आप खा नहीं सकते, पैसों से आपका पेट नहीं भर सकता, पैसे आप फ्रिज में रख के उसके बाद पका पका के यूज नहीं कर सकते, पैसे आपके पास कितने भी हों आपको गिजा की जरूरत होती, और ये पैसे तो सिर्फ एक जरिया है। अगर सोचें वो गिज़ा ही, जो ग्रोसरी, वो जो गल्ला, वो जो अनाज, ये सब ना हो और इनका कहत पड़ जाए, तो आप पैसे ले लेके फिरते रहें, मिन्नतें करते रहें, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आखिर वो इतना सफर करके आए, उनके पास पैसे थे लेकिन वहां पे गल्ला ही नहीं था, उनको यहां आना पड़ा। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि जो इनके, जो उन्होंने पेमेंट की है ना, वो उनकी पेमेंट लौटा दो, फी रिहालिहिम, वो उनकी रख दो उनकी उनके बैग्स में, उनके जो बोरियां थी उनके अंदर ही रख दो, लअल्लहुम, ताकि वो यारिफूनहा, उसको पहचान जाए, इदन कलबू इला अलीम, जब वो अपने घर वालों में वापस आए। क्यों क्यों पहचान, ये सारा रखने की क्या जरूरत है, वो पहचान लें, पहचान क्या पहचानेंगे, वो ये पहचान जाएंगे कि ये कितना नेक दिल बादशाह है कि इसने हमारी पूंजी भी वापस कर दी और नहीं रखी, और लअल्लहुम यरजिउन, और सारे का मकसद ये है शायद कि वो लौट आए। तो एक सबब भी उनको दे दिया, सबब भी इख्तियार किया, उनको ताकीद भी कर दी, शौक भी दिलाया, डरा भी दिया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि ये वापस आ जाए। वो इस चीज को यकीनी बनाना चाहते थे कि ये लोग जरूर वापस आए। तो उनको पता था ना, उनको इंसान के मिजाज की समझ थी, उनको पता था कि इस वक्त मजबूरी का वक्त है, और अगर ये ना हो कि ये घर जाएं और इनके पास पैसे ही ना हो वापस आने को, तो फिर वो कहेंगे कि हम क्यों जाएं, और ये नहीं आएंगे तो अपने भाई को भी नहीं लेकर आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो कीमत उन्होंने पे की थी उसको सामान में रख दिया, और उससे ये था कि अब इनके लिए रास्ते ओपन कर दिए कि वापस दोबारा आ जाएं, क्योंकि कीमत है अब उनके पास। अच्छा, तो क्या ये जायज हुआ कि उनसे पेमेंट ही नहीं ली, बाकी सबसे तो पेमेंट ली जा रही थी, और इनसे इनकी वापसी कर दी? तो असल में मुफसरीन कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, एक तो ये कि अपने तौर पर, जाहिर है वो तो इतने बड़े वजीर थे, वजीर खजाना थे, जहाँ चाहते थे जाते थे आते थे, तो उन्होंने अपने तौर पे खुद पेमेंट कर दी थी इसकी, और उनकी उनको वापस कर दी थी। और दूसरे हमें यहाँ पे पता चलता है एहसान का, वो मोहसिन थे, इन भाइयों ने उनके साथ क्या सलूक किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि अब भाइयों के साथ भी, यानी पहले तो आपने उनका एहसान देखा ना बाकी लोगों के साथ, लेकिन वो भाई जिन इनकी जान के दर पे थे, उनके साथ एहसान का मामला करना बहुत बड़ी बात होती। देखिए, बाकी लोगों के साथ फिर भी हम कोई अच्छा कर ही लेते हैं, कभी ना कभी हमारा मूड हो जाए, हमारा हो जाए, तो हम आउट ऑफ द वे जाके भी किसी की हेल्प करने को खड़े हो जाते हैं, किसी स्ट्रेंजर की भी कर देते हैं, लेकिन जिसने हमें तकलीफ दी होती है ना, उसके लिए दिल को नरम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इंसान ये कहे कि हाजी इसने मुझे, एक वक्त था कि इसने मुझे बड़ी तंगी दी है, इसने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, ये मेरे साथ बहुत हार्श रही है, या इसने मेरे साथ बहुत बुराई की है, अब इसके साथ अच्छा कर लेना, ये तो ये इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यही है मोहसिनीन की सिफत, कि उन्होंने ऐसे भाइयों के साथ भलाई की जिन्होंने उनके साथ बुराई की भी थी, उन्होंने सिला रहमी भी की, और दूसरी बात ये भी कि उन्होंने कीमत वसूल करने को अच्छा नहीं समझा कि ये मेरे भाई हैं और मैं इनसे कीमत लूं, ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर। और एक और बात ये कि वो चाहते थे कि ये लोग वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, इनको जब ये कीमत मिलेगी तो इनको कोई मसला नहीं होगा वापस आने में, तो इसलिए उन्होंने उनके सामान में इस कीमत को रख दिया। एक और पॉइंट भी मुफस्सरीन यहाँ पे लिखते हैं कि उनको ये पता था ये पैगंबरों के बेटे, पैगंबर के औलाद है, तो ये जब देखेंगे कि ये हमारे पास उनकी बादशाह की कीमत है, तो वो उनका बाप उनको कहेगा कि नहीं, ये तुम लौटा के आओ उनको। बहुत सारे पॉइंट्स एक आयत से मुफसरीन ने लिखे हैं तफसीरों में। तो लेकिन बाहर के सबसे बड़ी बात ये कि उनको तरगीब दिलाना था, उनको इंसेंटिव देना था कि उस, और इसके लिए उन्होंने अमली कदम भी उठाया कि उनको उनकी कीमत लौटा दी। फलम्मा राजा उला अबीहिम, तो अब उनको नहीं पता कि हमारे सामान में ये रख दिया, चुपके से रखवा दिया। तो अब वो जो भाई वापस फलस्तीन पहुंचे हैं अपने बाप के पास, कालू, अब घर पहुंचते ही उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमें ये इतना कुछ मिल गया। अब देखे ना, कालू या अबाना मुनिया मिनल कही, हमारे लिए तो रोक दिया गया गल्ला, हमें तो नहीं अब गल्ला मिलना अगले साल के लिए। फअरसिल माना अखाना, हमारे साथ तो हमारे भाई को आपको भेजना पड़ेगा, आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजे, नकतल हम गल्ला लाए हुआ, इन्ना लहूला हाफिजून। और उनको ये पता तो है कि बाप इनकार कर दे, और वो कहेगा कि तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकोगे, जैसे पहले हुआ था। दोबारा स्टोरी वहीं से दोहराई जा रही है। और एक अंदर बात तो थी ना कि बाप को क्या कंसर्न्स होंगे, तो फौरन पहले ही कह दिया कि हम तो इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम तो इसकी बड़ी अच्छी हिफाजत करेंगे, आप इसकी तो फिक्र ना करें। बस ये अब देखिए, अभी जो वो गल्ला लाए हैं उसकी कोई बात नहीं है, आते ही बर्स्ट हो गए, फट पड़े बाप के ऊपर कि बस आप देखे ना, अब हमें नहीं मिलना, और इसको इशू बना लिया, और बड़ी इमोशनल हो के हमें तो मिलेगा ही नहीं, हमारे साथ भाई को भेजें, हम गल्ला लेकर आए, हम तो उसकी हिफाजत भी करेंगे। तो वो आगे से फरमाते हैं, काला हल आमनुकुम अलैहि, क्या मैं भरोसा कर लूं तुम पर इसके मामले में, इल्ला कमा आमिनतुकुम अला अखी मिन कब्ल, मगर जैसे कि हम मैंने पहले भरोसा किया हुआ तुम पे इसके भाई के मामले, वैसे ही भरोसा कर लूं, दोबारा फिर वही करूं। और आपको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक बिल से दो दफा नहीं डसा जाता। नहीं, एक दफा आपको कहीं से कोई परेशानी उठानी पड़ी है तो ऐसा नहीं करना कि आप दोबारा वहीं चल पड़े और वहीं पे जाके अपना सर दे दें कि अब ये देखो, चलो पहले भी मारा था, आप फिर करो वही जो मेरे साथ पहले किया था। सलो, तो ये कोई अकलमंदी नहीं होती ना। तो इसलिए एक दफा तजर्बा हो गया कि यहाँ पे इस तरह से हुआ है, तो फिर उसके बाद दोबारा दोबारा वही चीज को आजमाते रहना, ये तो सही नहीं है। और इससे ये भी पता चला कि उनके अंदर अभी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का गम नहीं गया था। और कैसे बाप अपनी औलाद को भूल सकता है, और खास तौर पे ऐसी औलाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी। और ये भी पता चलता है ना कि इंसान एक दफा अपनी रेपुटेशन खराब कर लेना, तो उसको वापस वो भरोसा हासिल करना बड़ा ही मुश्किल होता है, अपना ट्रस्ट कायम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इंसान को बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी रेपुटेशन के बारे में, कि मत किसी को चांस दें कि आपकी रेपुटेशन खराब हो, आपका किरदार के ऊपर कोई दाग लगे, आपके ऊपर कोई हर्फ आए, कोई बात आ जाए, इसके मामले में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जा रहे थे, हजरत सफिया साथ थी आपकी जौजा मोहतरमा, तो सहाबा, रात का वक्त था, सहाबा सामने से आ रहे थे, दो सहाबी आ रहे थे, तो वो जल्दी से उन्होंने देखा कि अफजल सलम अपनी बीवी के साथ हैं, तो वो जल्दी से एक तरफ को होके उधर तेजी से निकलने की कोशिश की। तो आप सलम ने फरमाया, रुक जाओ, ये मेरे साथ सफिया है, मेरी बीवी। उन्होंने कहा, अस्तग़फिरुल्लाह, हम कैसे, कोई आप कैसी बात की, हम कैसे आपके ऊपर कोई बात सोच भी सकते हैं। आप सलम ने फरमाया, नहीं, इंसान के खून में शैतान दौड़ता है, उसकी खून की तरह शैतान दौड़ता है, जैसे इंसान के अंदर उसका खून दौड़ रहा था ना, इस तरह शैतान, यानी शैतान इंसान के अंदर कोई वसवसे डाल सकता है। अल्लाह पता नहीं किसके साथ जा रहे हैं, पता नहीं क्या मामला है। तो किसी को चांस ही ना दें, किसी को ना मौका दें कि कोई ऐसी बातें आपके बारे में कर सके, अपने आप को इतना बचा के रखें, क्योंकि पता है कि शैतान तो हर एक के साथ है ना, क्या पता किसके दिमाग में क्या बात डाल दे और किसी के कैरेक्टर पे बात लग जाए। तो ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे नहीं कोई परवाह, मुझे नहीं दुनिया, जो मर्जी बातें बनाते रहे, मुझे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपको फर्क पड़ना चाहिए, मत अपनी अपने ये चांस ना दे किसी को कि कोई ऐसी बात आपके ऊपर करे, कोई उंगली उठाए। बाकी आगे अल्लाह की सपोर्ट करना चाहिए, मगर अपनी तरफ से यही कोशिश होनी चाहिए। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, बस अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। मैंने तुम्हारी हिफाजत तो देख ही ली है, असल हिफाजत तो अल्लाह ही की हिफाजत है, मैं तो उसकी हिफाजत में ही को समझता हूँ कि वो ही बेहतरीन हिफाजत है। यानी ये कह रहे हैं ना, हम है हिफाजत करने वाले, हम बड़ी अच्छी उसकी हिफाजत करेंगे, तुमने क्या हिफाजत करनी, तुम्हारी हिफाजत तो देख ही ली, तो तुम पे नहीं भरोसा है। हाँ, अल्लाह पे भरोसा है, और वाकई अल्लाह ताला ही है बेहतरीन हिफाजत करने वाला इंसान की। और इंसान को अपने आप को अल्लाह ही के सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप तदबीर ना इख्तियार करें, आगे हम देखेंगे तदबीर भी इख्तियार की है याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, मगर असल भरोसा अल्लाह पे ही होना चाहिए। और जब इंसान ये सोच लेता ना कि हिफाजत तो अल्लाह ने करनी, मेरे बच्चों की भी अल्लाह ने हिफाजत करनी है, मेरे माल की भी, मेरे घर की भी, मेरी सारी चीजों की, तो फिर इंसान अल्लाह के आगे झुकता है, फिर इंसान अपने आप को मोहताज समझता है कि हफीज तो अल्लाह ही है। मगर ये इसका मतलब नहीं होता कि फिर आप अपनी सारी चीजों को ऐसे ही बाहर फेंक देंगे, हिफाजत तो अल्लाह ने ही करनी। पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। वह अरहम और राहिमीन, और वो सब रहम करने वालों में सबसे बढ़ के रहम करने वाला, वो हिफाजत भी करता है रहम भी करता है। जितनी भी कितनी भी कोई ताकतें हों, कितनी भी कोई पावर्स हो, लेकिन आप देखते हैं कि जितनी ज्यादा किसी के पास पावर आती है ना, अक्सर आप भी इससे एग्री करेंगे, अक्सर बेरहम हो जाते हैं, रहम निकल जाता है उन पे। रहम ज्यादातर आम लोगों में होता है, या जो बेचारा खुद पिसा होता है उसके अंदर फिर भी रहम होता है। जो जितने बड़े ऊपर पहुंच जाते हैं, मालदार हैं, ओहदों वाले, उनके अंदर रहम नहीं होता, फिरौन बन जाते हैं वो। लेकिन अल्लाह ताला कैसा है कि उसके पास कुव्वत भी है हिफाजत करने की, वो बहुत ताकत वाला भी है, और सारे रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो रहम मांगना हो तो किसकी तरफ देखना चाहिए, किसकी तरफ देखना चाहिए, अल्लाह की तरफ। यानी कि मुझे रहम की अपील इधर से करूं, इधर से भीख मांगू, अल्लाह तू अरहम और राहिमीन है, तो अल्लाह ताला को ये कहकर पुकारे, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले मुझ पे रहम फरमा। और हमें ये भी समझ आ गई कि पैगंबर भी इंसानों की हिफाजत पे भरोसा नहीं करते थे, अल्लाह की हिफाजत पे भरोसा करते थे, और अल्लाह ही को सबसे ज्यादा रहम करने वाला समझते थे। चाहे कोई कह भी दे के, मैं नहीं जी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपकी इस चीज़ की हिफाजत करूंगी, तो तब भी नहीं, सबसे बड़ी हिफाजत अल्लाह ही की। और क्योंकि वाकई इंसान कितनी हिफाजत कर सकते हैं किसी चीज़ की, एक हद तक ही कर सकता है। वलम्मा फतहु मताअहुम, फिर और जब अब खोल रहे हैं वो, अब वो खोल रहे हैं अपना सामान, तो जब उन्होंने अपने सामान को खोला, वजदू, उन्होंने पाया, बिदातहुम, अपना सरमाया, अपनी वो पूंजी या अपनी जो कीमत जो उन्होंने पे की थी, रुद्दत इलैहिम, जो लौटा दी गई उनकी तरफ, वो जो कीमत उन्होंने पे की थी वो उनको सामान में ही मिल गई। तो वो इसका मतलब ये पहले आके बाप के पीछे पड़ गए, ये भी नहीं उन्होंने सोचा कि पहले सामान ही खोल ले, जो सामान तो रखा एक तरफ, तो जाके बाप को, अब नहीं आपने भाई को हमारे साथ भेजना है। जब बच्चे किसी जिद में आ जाते हैं तो वो फिर वो इसी तरह करते हैं, और माँ बाप को ही सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं। कालू या बाना माना बगी, उन्होंने कहा है अब्बा जान, अब और हमें क्या चाहिए, अब हमारी तो कीमत भी हमें मिल रही, और क्या चाहिए हमें, हाँ दी बिदात तू ना रुद्दत इलई ना, ये हमारी पूंजी है जो हमारी तरफ लौटा दी गई, अब हमारे पास तो ये भी है। और दूसरा इसका अगर माँ का माना नहीं का करें, तो नहीं हमें चाहिए, तो यानी कि नहीं हम चाहते, यानी अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे पास कीमत भी है, आप बस भाई को हमारे साथ भेज दें, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, हम कुछ नहीं मांगते। तो इसका मतलब है कि जब उनको ये कीमत अपने सामान में मिल गई, तो वो बहुत खुश हुए, और उनके पास एक और रीजन हो गया कि अब तो कोई वजह ही नहीं बाकी बची कि आप बिन्यामीन को हमारे साथ ना भेजें, अब तो सारी वजूहात ही खत्म हो गई, अब देख लें कीमत भी आ गई। वह नमीर अहलना, और हम गल्ला लाएं अपने घर वालों के लिए, वना फादुआ खाना, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की। फिर बार बार बाप को यकीन दिला रहे, वह नजदादु कई लबाइर, और हम ज्यादा लाएंगे एक ऊंट भर गल्लादारी का, कई लू यसीर, ये तो बहुत आसान पैमाना है, यानी इतना गल्ला लाना तो कोई मुश्किल ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं अब रह गया। हम और देखिए कितनी उन्होंने बातें की, कितने फवायद गिनवाए, हम गल्ला भी लाएंगे अपने घर वालों के लिए, हम भाई की हिफाजत भी कर देंगे, हम एक ऊंट हमें ज्यादा भी मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर है ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा ऊंट मिलेंगे, और ये तो अब बड़ा आसान काम हो गया हमारे लिए। उन्होंने क्या फरमाया, अब ये देखे ना कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बाप को ना कन्विंस करने की पूरी कोशिश में लगे हैं, और हर तरह से चाहते हैं कि बाप किसी तरह उनके साथ भाई को भेज दे। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अब और हमें क्या चाहिए। काला, उसने कहा, किसने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, लन उर्सिलहु माकुम, मैं तो बिल्कुल इसको तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा, मगर एक कंडीशन में, हत्ता तूनी मौसिक मिन अल्लाह, यहां तक कि तुम मुझे दो अपना पक्का वादा अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की कसम खा के या उसके नाम पे तुम मुझे वादा दोगे, तुन्ननी, क्या वादा, कि अलबत्ता तुम जरूर लाओगे मेरे पास भी ही इसको, तुम ये अल्लाह के नाम के ऊपर मेरे साथ वादा करोगे कि तुम इसको मेरे पास लौटा के लाओगे, इल्ला अन युहात बिकुम, मगर एक ही सूरत है कि तुम घेर लिए जाओ। ये ले जाओ से मतलब यहाँ पे ये है कि दो माने हैं, कि या तो तुम सारे ही हलाक हो जाओ, तो फिर तो जाहिर है कोई बात ही नहीं रह जाती, या फिर तुम मगलूब हो जाओ, कोई ऐसे ही तुम्हें कैद कर ले, पकड़ ले सारों को, बेबस हो जाओ, तो और बात है, अदरवाइज तुम इसको मेरे पास लेकर आओगे। फलम्मा आतौहु मौसिकहुम, अब वो जो भाई थे वो तो किसी कीमत पे भी ये चीज करने के लिए तैयार थे कि उनके साथ भाई को भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल पक्का वादा करते हैं। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला इस पर जो हम कहते हैं हमारा वकील है, मैंने अल्लाह को वकील बनाया, मैंने अल्लाह के सपुर्दी में मामला करता हूँ, कितनी भी कोई कसमें खा ले, कर स्टिल एंड ऑफ द डे वो तो इंसान ही है ना, भरोसा फिर भी अल्लाह की जात पे ही होना चाहिए। तो ये हमें बड़ी अच्छी तरह यहां से पता चल रहा है कि किस तरह उन्होंने मेक श्योर करने की कोशिश की, और इसका मतलब है कि भाइयों के अंदर यानी अपने बेटों के अंदर वो कोई ना कोई तो देखते होंगे कि अल्लाह की कोई कोई अल्लाह ताला के नाम की कोई वैल्यू है इनके नजदीक, तो अल्लाह की कसम खाओ, ठीक है, कि तुम ये अहद पूरा करोगे। तो अल्लाह ताला की नाम को बीच में वो लाए, इसका मतलब थी उनके अंदर कोई ना कोई पहचान, कोई समझ, कोई ये चीज तो थी उनके अंदर। वो कहा या बनिया, और उन्होंने कहा, ए मेरे बच्चों, ला तदखुलो, ना तुम दाखिल होना, मिम बाबे वाहिदिन। अब यहां पर याकूब अलैहिस्सलाम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने बच्चों को, किस चीज की, कि जो वो जा रहे हैं अपनी एक समझ ले एक मुहिम है, एक बहुत बड़ी उनके सामने एक प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर उन्होंने भाई को लेकर जाना है, हिफाजत से वापस लेकर आना है, और फिर ये एक दूसरी लैंड का सफर है, दूसरी जगह जाना, खतरात से खाली नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। तो बाप अब उनको जाने से पहले पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुमने कैसे जाना, और इसमें कोई हर्ज नहीं होता, इंसान असबाब भी इख्तियार करे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के सपुर्द करे। पहले ये याकूब अलैहिस्सलाम ने देखें फरमाया कि अल्लाह ही है जो हिफाजत करने वाला, तो उसके बाद तो कोई इंस्ट्रक्शन ही देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो साथ उनको बता भी रहे हैं कि तुमने कैसे करना है, कैसे दाखिल होना वहां पे। क्योंकि देखिए, एक तो इनके बेटे ना जवान थे, खूबसूरत थे, बड़े कमाल वाले थे, बड़े स्ट्रोंग थे, और 11 बेटे एक साथ जा रहे हैं। एक तो इसके अंदर ये भी हो सकता था कि किसी को खतरा हो जाए कि पता नहीं ये कौन आ रहे हैं, इतना सारा बड़ा जत्था, इतने बड़े बड़े जवान लड़के ऐसे चले आ रहे हैं, तो ये भी एक था, जवान मर्द चले आ रहे हैं। दूसरे ये भी था कि नजरे बद ना लग जाए। तो मिस्र के उस जमाने में 4 दरवाजे थे, जैसे कि शहरों के दरवाजे हुआ करते थे पुराने जमानों में, लाहौर का भी मोची गेट, लोहारी गेट, इस तरह से गेट आज भी मशहूर हैं। ऑल दो वहां पे कुछ है नहीं, लेकिन गेट्स हर शहर के, बड़े बड़े शहरों के गेट होते थे, और वो फसीलों के अंदर शहर होते थे, ऐसे ही खुले नहीं होते थे, तो गेट से ही लोग एंटर होते थे। अब वो एक ही गेट से सारे जाएंगे तो नजरों में आ जाएंगे ना, और कोई बुरी नजर भी लग सकती है। तो इसलिए वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एक दरवाजे से ना दाखिल होना, वदखुलू मिन अबवाबे मुतफर्रिका, बल्कि फर्क फर्क दरवाजों से दाखिल होना, ठीक है। तो वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाह मिन शेई, और मैं कोई बचा तो नहीं सकता तुमको अल्लाह से किसी चीज से भी, हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है, इनेल हुक्मो लिल्ला इल्ला लिल्ला, मगर अल्लाह का नहीं फैसला मगर अल्लाह का। अब ये क्या कह रहे हैं कि उनको किसी भी खतरे से बचाने के लिए वो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और ये ना हम सबके लिए इसके अंदर बड़े लेसन्स हैं, इसलिए इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन साथ आप देखें ये इंस्ट्रक्शन देना उनका एक सबब इख्तियार करना है, लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि इट डजंट मीन कि जो है ना, जैसे हम चाहते हैं कि अगर हमने ये एहतियात की तो फिर इस एहतियात करने की वजह से हम बच जाएंगे, नहीं, फिर भी किसी चीज में भी मैं नहीं बचा सकता तुमको, हालांकि वो अल्लाह के नबी हैं, फिर भी अपने बेटों को ये कह रहे हैं कि मैं बचा नहीं सकता तुमको अल्लाह से किसी चीज में। अब आप कहेंगे नबी नहीं बचा सकता तो और कौन बचाएगा, सब सबसे ज्यादा तो इंसान को ये होता है ना कि एक अल्लाह के पैगंबर है और इन ये अल्लाह के करीब हैं, तो ये तो जरूरी अपने बेटों के लिए कोई फूंक देंगे और उसके बाद बस बेटों की हिफाजत ही रहेगी, नहीं, अल्लाह ताला के फैसले के आगे कोई बच नहीं सकता। तो क्या फिर तदबीर नहीं इख्तियार करनी चाहिए? तदबीर भी उन्होंने इख्तियार की, साथ ये भी कह रहे हैं। तो इस बैलेंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, याद रखें, ये आज के हालात के अंदर बहुत रेलिवेंट है और बहुत अच्छी तरह हम इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए, हम एक कोविड का जमाना हमने देखा है, बाज लोगों को आपने देखा वो तदबीर इख्तियार करने पे कोई तवज्जो नहीं है, वो जो होना होगा हो जाएगा, मरना तो एक दिन है, कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना मास्क पहनो ना कोई और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, कुछ भी ना करो, बस जैसे पहले थे वैसे ही रहो, कोई तदबीर नहीं इख्तियार करनी, कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करना, बस ये सोचते रहना हाँ असल हिफाजत तो असल में अल्लाह ही की है ना, तो क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो कि इतनी तदबीर इख्तियार करते हैं, इतनी करते हैं कि वो उसमें भी एक्सट्रीम पे ही चले जाते हैं, कैसे लगता है कि इनका सारा भरोसा बस तदबीर पे है, अल्लाह ताला का कहीं जिक्र नहीं, वो बस समझते हैं कि ये हमने कर लिया ना अभी हम सेफ हैं, ये नहीं करेंगे तो बस हम कहीं सेफ हो ही नहीं सकते, और अल्लाह ताला के जात को बीच में से उसके नाम को निकाल ही देते हैं उनके भरोसे, सिर्फ मास्क पे, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग पे, सिर्फ वैक्सीन पे, इन चीजों पे। ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। यहां पे आप देख रहे हैं तदबीर भी है और अल्लाह पे भरोसा भी, दिस इज द राइट वे, और हम यूजुअली एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, आइधर इस एक्सट्रीम पे या बिल्कुल ही दूसरी एक्सट्रीम पे। अच्छा, जो चीजों पे भरोसा करते हैं अगर उनको फिर हो जाए तो कहते हैं हाय हमने तो मास्क भी लगाया, हमने तो ऐसे भी किया, हमने ये भी किया, ये भी किया, और फिर हमें ये हो गया, तो दूसरे कहते हैं देखा इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही गलत। यहां पे देखें, एक ही वक्त में तदबीर भी अख्तियार करती हैं, और साथ वो ये भी कहते हैं कोई तदबीर नहीं बचा सकती, मैं भी नहीं तुम्हें बचा सकता, और ये मेरा कहना भी नहीं तुम्हें बचा सकता। अल्लाह ताला से किसी चीज में फैसला अल्लाह नहीं करना, अगर उसने ही है जो बचाना है, अगर वो बचाएगा तो बच सकते, तो फिर तदबीर की क्या जरूरत है, वो भी अल्लाह ही का हुक्म है कि तदबीर करो। बात समझ आ गई? बचने के लिए चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई चोर डाकू है, चाहे कोई और किसी किस्म का खतरा है, उसके से बचने के लिए आपको तदबीर करनी चाहिए, फिर उसके बाद अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। बात समझ आ गई? और इस बैलेंस को समझें, ठीक है। दूसरी यहां पे बहुत अहम बात जो उन्होंने कही कि भाई एक दरवाजे से ना जाना, अनड्यू टेंशन ना लेना, ये इस तरह से ना करना, ये किस वजह से था? इसलिए कि नजर ना लग जाए। क्या नजर भी कोई चीज होती है? बाज लोग नजरे बद को कुछ नहीं समझते, वो कहते चलो कोई नजर नजर कुछ चीज नहीं होती, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, ये हदीस है कि अल आइनु हक, नजर बर हक है, नजर लग जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घूरने से भी मना फरमाया किसी की चीज के तरफ, या आप उसको आंखें भर भर के देखें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नजरे बद के दम कराने का हुक्म दिया, ये बुखारी और मुस्लिम में। इसी तरह बुखारी में, तिरमिजी और मुस्लिम में ये भी है कि हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बच्ची को देखा जिसके चेहरा का रंग जो था ना वो मुतगैर हो रहा था, मतलब उसका रंग जर्द सा था, अब जो जैसे होता है रंग बच्चों का वैसे नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर दम कराओ क्योंकि इस पर नजर लगी हुई है। तो बाज दफा ऐसे लोग भी होते हैं जो बता देते हैं कि इसके ऊपर नजर लगी, बाज दफा इंसान को खुद भी पता चल जाता है कि नजर लगी है। बाज दफा ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई सबब ही नहीं समझ आता कि ये है क्या चीज, को हर तरह का आप टेस्ट करा लेते हैं, समझ ही नहीं आते, वो भी नजरे बद हो सकती है, कंफर्म नहीं लेकिन हो सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अपने नवासों को हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को दम करते थे, और फरमाते थे कि तुम्हारे बाप इस्माइल और इसहाक और ये भी दम किया करते थे। तो वो क्या दम करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन कुल्ली शैतानिम व हामतिम व मिन कुल्ली आइनिल लामति। उईदुकुमा, क्योंकि दो थे ना, तो आप बच्चों को कर सकते हैं दम, उईदुकुम कह सकते सारे बच्चों के लिए, एक है तो उईदु का या उईदु की, या और अपने लिए भी आऊदु भी कलीमातिल्लाहि तामाति मिन कुल्ली शैतान व हामति व मिन कुल्ली आइने लामाते। अगर आइने लामा होती ना तो फिर क्यों कहा जाता इस दुआ में कि मैं हर शैतान से और हर हामा यानी ये जो जहरीला जानवर होते हैं उनसे और हर आइने लामाते नजरे बद से अल्लाह के जो कलिमात हैं उनकी पनाह तलब करती हूँ। ये दुआ है मसनून दुआओं में से, इससे दम किया जाए। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस वो फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, जाफर की औलाद पर नजरे बद बहुत जल्द लग जाती, इनके शोहर थे जाफर रजी अल्लाह तआला, तो इनके बच्चों को नजर बहुत जल्द लग जाती, क्या मैं इन पे दम किया करूं? तो आपने फरमाया हाँ, अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत कर सकती है तो नजर तकदीर पर सबकत कर सकती है। और हमें हदीस में पता चलता भी है कि किस तरह से एक सहाबी को नजरे बद लग गई थी और वो ऐसे गिरे कि उनको तो उन्हें ऐसा बुखार चढ़ गया और मरने के करीब हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो आपने फरमाया नजर का लगना बरहक है। फिर जिनका पता था कि लोगों से पूछा कि भी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि भी फलां बंदे जो थे वो इतने मुतासिर हुए थे इनके जिस्म से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि आप वुजू करें, वो वुजू उन्होंने किया तो उनका वुजू का पानी लेके तो फिर जो सहाबी बीमार थे उनके ऊपर बहा दिया, तो वो फिर उसी वक्त ठीक हो गए। तो अगर पता हो कि किसकी नजर लगी है तो उसको उसके गुसल का पानी या उसके वुजू का पानी लेके उस बंदे के ऊपर उंडेल दिया जाए। और ये नजर ऐसी बुरी चीज है कि ये तो कभी इंसान को यानी कत्ल कर देती है, खत्म कर देती है, उसकी जान चली जाती है इसकी वजह से। तो इसलिए आपसे सर ने फरमाया ना कि नजर जो है वो ऊंट को हंडिया तक ले जाती है। यानी इंसान इंसान के लिए भी यही, जानवरों को भी नजर लग जाती है, लेकिन इंसान के लिए कि उसकी मौत वाकई हो सकती। इसीलिए जब आप किसी की अच्छी चीज को देखें तो कभी हाउ हाय हाय ना ऐसे करें, बल्कि माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्ला कहें, तबारक अल्लाह कहें, अल्लाह मुबारक लहुम कहें, अल्लाह मुबारक फी कहें, इस तरह के कलिमात आप मुंह से अदा कीजिए कि अल्लाह आपको इसमें बरकत दे, और अल्लाह ताला जो अल्लाह ने चाहा वो ही दिया, और इस तरह के अल्फाज कहने से फिर नजर से वो बच सकता है। और बाज लोगों की नजर बुरी होती है बहुत ज्यादा, कि उनकी नजर बहुत जल्दी दूसरों को लग जाती है, और बाज लोग ऐसे हैं जिनको नजर बहुत जल्दी लगती है, यानी बाजों की नजर होती है जो बहुत जल्दी लोगों को लग जाती है, तो ऐसे लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। उनको जब पता है कि हमारी नजर लग जाती है दूसरे को, पास मशहूर भी होते हैं कि फलाने की नजर बड़ी बुरी है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए और उनको इस चीज का एहतमाम करना चाहिए। और बाज लोगों को नजर, जैसे हजरत असमा बिनते उमैस ने फरमाया ना कि जावर के बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो इस तरह बाज लोग भी होते हैं उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो उनको भी एहतियात करनी चाहिए। और इसी तरह बाकी सबको भी नजरे बद से बचने के लिए बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पे वो ये भी कह सकते थे कि तुम ऐसे होके जाना, तुम ये पहन के जाना, और तुम जरा सीना तान के दाखिल होना, और तुम सारे इकट्ठे दाखिल होगे, लोगों को जरा पता चले किसके बेटे आ रहे हैं, और ऐसे हमारे तो यही ख्यालात होते हैं, घर ऐसा हो और गाड़ी ऐसी हो और शादी ऐसी हो, और ये सब चीजें हम इतने प्रमोट करते हैं, इतनी शो ऑफ करते हैं, इसके अंदर इतना दिखावा करते हैं, और इससे डरते नहीं है कि नजर लग जाती। कई लोग, इतने बेशुमार लोग हैं जो आके कहते हैं जी हमारे इस तरह से हुआ ऐसे हुआ, बस फिर पता नहीं, समझ ही नहीं आई और बस डाउनफॉल हो गया। बस पढ़ने वाले इतने अच्छे बच्चे होते हैं, एकदम ही फिर पता नहीं क्या होता है, ऐसे डाउन होते हैं कि उनका दिमाग ही नहीं चलता। तो ये क्या है सब चीजें, ऐसे क्या उनको हो जाता है, या ऐसे क्या जवाल आ जाता है। बाज ने कहा कि शादी की बच्चे की और उसके बाद ऐसी बीमारी घर में आई, या कारोबार में ऐसा नुकसान हो गया, या ऐसे उनको भुगतनी पड़ी ऐसी चीजें। तो जब आप नजरों में आते हैं तो फिर ये काम तो होंगे ना। एक पैगंबर भी अपने बच्चों को नजरों में आने से मना कर रहे, और हमें शौक है कि हम लोगों की नजरों में आए। उसके लिए जो नजरों में नहीं भी आ रहा, तो वो भी अपने आप को इतना दिखाता है फेसबुक पे, फलां फलां जो भी चीजें, ये सारी जो है उन पे अपने अपने कभी हुस्नो जमाल की नुमाइश, कभी कपड़ों की नुमाइश, कभी घरों की नुमाइश, कभी अपने हम यहाँ पे वेकेशन पे गए, कभी अपनी फैमिली की, मैं और मेरा हस्बैंड, और मेरा हस्बैंड तो मेरा इतना ख्याल करता है, वो मुझे ये तोहफे दे रहा और वो दे रहा, इससे क्या होगा। आप तो इनवाइट कर रहे हैं अपनी तरफ नजरे बात को, और फिर जब लग जाती है फिर हम रोते हैं, आइए क्या हो गया हमारे साथ, क्यों हो गया ऐसा, और एहतियात करते नहीं है। ऐसे ही है, अब आप ना सर्दी के अंदर आप जा रहे हैं तो ना आप कोई जैकेट पहने, ना आप कोई स्वेटर पहने, और बाहर ऐसे ही निकल जाए, अपने आप के लिए खुद ही आप इंतजाम कर रहे हैं ना बीमार होने का। इसी तरह नजरे बद का भी हम खुद ही एहतमाम करते हैं। तो अपनी नेमतों को बहुत ज्यादा शो ऑफ ना करें, जो नेमतें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं उस पर हम्बल रहें, उस पर आजी अख्तियार करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, इतने भी वहम में ना पड़ जाएं कि दुनिया से मिलना जुलना ही छोड़ दे, कि हाय नहीं 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 हमें नजर ना लग जाए, बस हर वक्त इसी में हमें नजर ना लग जाए। भाई फिर ये बात भी सोचनी चाहिए कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्ला अलैहि तवक्कल, तो उसी पे मैंने भरोसा किया। ये भी नहीं कि आपको बस नजर का ही रहे, कि नजर ही है जो अगर वो जो मेरा नुकसान कर सकती है, नजर ही है जो मुझे बीमार कर सकती है, नजर ही है जो हमारे लिए कुछ बुरी साबित हो सकती है, बाकी अल्लाह ताला की जात को तो निकाल ही दिया। अल्लाह का भी कोई पावर है कि नहीं, या सिर्फ नजर ही है जो सब कुछ करती है। तो आपने तो नफा नुकसान का मालिक तो नजर को ही बना लिया। तो यहीं पे वो फाइन बैलेंस है जो आपको सीखना है ना, तो ये इन असबाब या तदबीरों को या इन चीजों को ही सब कुछ समझ लें कि इन पे भरोसा करने लगे, ना ही ऐसा करें कि इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दें और आप कहें कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये आज आपको ये बात समझनी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में इतनी कॉमन है ये चीजें, और आज हम इन चीजों के इतने यूज्ड टू हो गए, हमने दोनों एक्सट्रीम से बचना है। और ये भी नहीं फिर कहना कि ओ, मैंने तो ये तदबीर की थी, उसके बाद ये हो कैसे गया? इसलिए इसका मतलब आपका भरोसा तदबीर पे था? उसके बाद आपको ये याद नहीं था कि एक अल्लाह है जिसका फैसला चलता है, और अगर अल्लाह ताला किसी को ना बचाना चाहे तो वो लाख तदबीरें कर ले, वो नहीं बचेगा। क्या इसलिए वो भी कह रहे हैं ना, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। तो फरमाते हैं, ये आप इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद फरमाते हैं अलैहि तवक्कल, तो उसी पे मैंने भरोसा किया। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे मुझे इस पे भरोसा है, अगर तुम लोग इस तरह करोगे ना, ये तदबीर इख्तियार करोगे, अलग अलग उनसे जाओगे दरवाजों से, तो फिर तुम बच जाओगे। ठीक है, तो अलैहि तवक्कल, तू मेरा भरोसा इस बात पे नहीं है जो मैंने तुम्हें कही है। आप भी जब बच्चे घर से निकलने लगे जरूर दें इंस्ट्रक्शंस, बेटा गाड़ी तेज ना चलाना, बेटी ऐसे रहना, ये करना, आप दे सकते हैं, कोई इसके अंदर हरज नहीं है। मगर फिर अगर आप ये सोचते हैं कि अगर वो गाड़ी तेज नहीं चलाएगा, आहिस्ता चलाएगा, तो शायद इससे बच जाएगा, नहीं। अगर अल्लाह की तरफ से कोई फैसला है तो फिर कोई भी नहीं बच सकता। तो मेरा भरोसा अल्लाह पे, वो आले ही फल या तवक्कल मुतवक्किलून, और चाहिए कि भरोसा करें, भरोसा करने वाले उसी पे। किसी ने अगर भरोसा करना है ना, तो वो अल्लाह पे ही भरोसा करे, अल्लाह पे ही भरोसा करे। कोई और जात इस काबिल नहीं है कि आप उसके ऊपर अपना ट्रस्ट रखें। इसलिए कि देखिए, सबसे पहली तो बात ये कि इंसान तो है ही इतने कमजोर, और हमारी तदबीरें भी चलानी अगर हैं तो अल्लाह ने ही चलानी है ना, वो तो नहीं चल सकती। लिहाजा हमें फिर भरोसा अल्लाह पे ही रखना चाहिए कि अल्लाह, मैंने तदबीर इख्तियार कर ली, बस यहां तक ही मेरा इख्तियार था। अल्लाह आगे तेरे ऊपर मैंने भरोसा किया, तू ही हिफाजत करना। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने पूछा था ना कि क्या मैं ऊंट का पैर बांध के तवक्कल करूं या उसको छोड़ के तवक्कल करूं? तो आपने फरमाया ऊंट का पैर बांध के तवक्कल कर। ठीक है, तवक्कल भी कैसे करना है, तदबीर करके फिर अल्लाह पे तवक्कल। ये नहीं कि बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, कोई ना मेहनत ना कोई काम करना, फिर कहें बस अल्लाह पे भरोसा है, उसने हमें रोजी देनी होगी दे देगा, उसने हमें खिलाना होगा खिला देगा। नहीं, उसने ही आपको कहा है, परिंदे तक भी अपने घोंसलों से उड़ के जाते हैं चरने चुगने के लिए, लेकिन उनका भी भरोसा अल्लाह पे होता है, उनकी मिसाल दी गई है हदीस में। अगर इंसान ऐसे भरोसा करें जैसे परिंदे करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको खिलाएगा, लेकिन वो भी चरने चुगने जाते हैं, अपने घोंसलों में ही नहीं पड़े सोए रहते। तो बाज लोग तवक्कल का यही माना समझते हैं कि हाथ पैर तोड़ के बैठ जाए, ना कोई सबब इख्तियार करें, ना कोई तदबीर करें, ना कोई मेहनत करें, ना कोई कोशिश करें, बस ये तवक्कल ही तवक्कल है बस। वलम्मा दखलू मिन हैथ अमरहुम अबूहुम, और जब वो उन्होंने दाखिल हुए जहां से उनके वालिद ने उनको हुक्म दिया था, इसका मतलब है इतनी तो बात का पास रखने वाले थे ही, यानी उनके बाप ने जैसे उनको इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाप तो जो मर्जी कहते रहे उनको क्या पता, हम तो एक दरवाजे से ही जाएंगे, ये नहीं किया उन्होंने। तो यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर खैर का पहलू था, ये पता चलता है यहां से। मा काना युगनी अनहुम मिन अल्लाह मिन शैइन, लेकिन ना था काम आता उनको अल्लाह से कुछ भी, इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब खदाहा, मगर एक ख्याल था, एक ख्वाहिश थी यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में, जो उन्होंने पूरी कर ली। यानी वो तो अलग अलग दरवाजों से ही गए, उन्होंने तो वैसा ही किया जैसे उनके बाप ने कहा था, मगर ये तदबीर काम नहीं आई, कुछ नहीं काम आई ये तदबीर अल्लाह के आगे, कुछ भी काम नहीं आई। मगर अब ये नहीं कहा गया कि उन्होंने क्यों तदबीर की फिर, बल्कि कहा गया ये एक ख्वाहिश थी जो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में थी, जो उन्होंने बस पूरी कर ली। वा इन्नहु लज़ू इल्मिन, और बेशक वो इल्म वाले थे, और उनका इल्म कहाँ से आया था, लिमा अल्लमनाहु, इसलिए कि सिखाया था हमने उसको ये इल्म, जो हमने सिखाया था उसको इल्म, उसमें से ये इल्म था कि वो तदबीर करते। ठीक है, जो उन्होंने और जो उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, जो उन्होंने तदबीर की, जो उन्होंने सबब इख्तियार किया, ये भी इस चीज को बुरा नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया कि ये तो तदबीर चली नहीं, देखो इस तदबीर का क्या फायदा, उनको नहीं करनी चाहिए थी तदबीर। नहीं फरमाया, ये उस वो बड़े इल्म वाले थे और यही इल्म हमने उनको सिखाया था कि तदबीर करनी है। तो ये एक ख्याल था, ये एक तदबीर थी जो यहां तक वो कर सकते थे उन्होंने की, ठीक है। और वाकई देखिए इस सिलसिले में तो तदबीर काम आ ही गई ना, कि उनको नजर तो नहीं लगी, मगर हाँ जो बाद में हुआ वो अलग बात है, मगर नजरे बद से तो वो बच ही गए। तो तदबीर उनको उनकी जो थी वो उस लिहाज से ठीक है, मगर जैसे वो चाहते थे कि इनकी हिफाजत हो जाए और ये ठीक ठाक मेरे पास वापस पहुंच जाए, वो नहीं हो सका। तो वो बड़े इल्म वाले थे, साथ उस इल्म के जो वास्ते उसके जो हमने उनको सिखाया था इल्म, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? अक्सर लोग ये नहीं जानते, एक तो ये बात कि इतनी चीजों की बारीकी को नहीं जानते, दीन के इल्म को नहीं जानते। इल्म अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ताला ही इल्म सिखाने वाला है, वो ये नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि जो तदबीर जितनी भी कर लो, लेकिन होगा वो ही जो अल्लाह चाहेगा। आप उतना ही कर सकते ना जितना आपके बस में है। और इंसान की तदबीर तकदीर को टाल नहीं सकती, ये अक्सर लोग नहीं जानते। वो तदबीर करके सोचते हैं तदबीर कर ली ना मैंने, अब कुछ भी नहीं होगा, आप देखना सब ठीक होगा। नहीं, तदबीर तकदीर से आगे तो नहीं निकल सकती। और अक्सर लोग ये नहीं जानते कि तदबीर का अंजाम जो भी हो, मगर तदबीर करना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं ना जो इसमें हो सकती हैं। और ये जो मैंने अभी आपको इसका बताया ना, नजरे बद की दुआ का, ये आप जरूर याद कर लीजिए, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, ठीक है। आसान ही दुआ है। और हिफाजत की दुआएं सुबह और शाम, फजर के बाद और असर के बाद हिफाजत की दुआओं का एहतमाम करें। कुछ भी नहीं कर सकते ना, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास तीन तीन दफा, और आयतल कुर्सी ये तो जरूर ही पढ़ लें, अगर आपसे बहुत ही लंबी चौड़ी नई भी दुआएं पढ़ी जा सकती। बाकी भी दुआएं बहुत जरूरी हैं, लेकिन जो दुआ आप, यानी अगर आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मैं बस उस वक्त बड़ी बिजी होती हूँ, देखिए ये तो आपको जुबानी याद है ना, फिर इनको भी मांगना मुश्किल है। वलम्मा दखलू, और जब वो दाखिल हो, अच्छा बात हो गए शहर के दरवाजों से अलग अलग होके, लेकिन जब वो दाखिल हुए अला यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, आवा इलैहि अखाहु, वो ठहराया अपने पास अपने भाई को। असल में दो दो लोगों को एक एक कमरा दिया गया, तो ये 11 थे, एंड में बिन्यामीन अकेले रह गए। तो एक तफसीर में ये भी लिखा हुआ था कि वो रोने लगे कि मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी उसके साथ होता, तो उनने कहा नहीं, तुम्हें मैं अपने पास मेहमान ठहराऊंगा। कहा इन्नी अना अखो, जब उन्होंने ऐसा किया कि बाकी भाइयों को दो दो को एक एक कमरा दे दिया और इनको अपने साथ ले गए, तो अकेले में उनको जाके बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं ही उसमें भी देखें ताकीद, इन्नी अना, बेशक मैं ही तुम्हारा भाई हूं, वो जो भाई गुमशुदा हो गया था। फला तबता इस बीमा क्या नु या मलून, बस ना आप गम करो इस पे जो वो कर चुके हैं, क्योंकि देखें ये भाई जो थे ना, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो चले गए, तो उसके बाद बिन्यामीन के दर पे हो गए, और उनको साथ बुरा सलूक करना, जुल्म करना, और उनको मतलब बुरा भला कहना, और ये सारी चीजें, वो वाला काम तो ना कर सके जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया था, मगर जितना हद तक वो कर सकते थे, ना इंसाफियां और ऐसी चीजें वो सब करते थे। और वजह वही थी कि क्यों हमारा बाप इसको अब इतनी तवज्जो देता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को तसल्ली दे रहे हैं कि अब गम करने की जरूरत नहीं, ला तहज़न, अब ना गम करो, अब जो हो चुका, जो वो कर चुके तो कर चुके। और इसमें मैं कहती हूँ कितना आला मकाम है, कितना आला मर्तबा है ये सबर का वैसे, क्योंकि इतना कुछ कोई कर चुका हो ना, उसके ऊपर कहना कि अब उसके ऊपर गम ना करो, ये आसान नहीं होता। क्योंकि इंसान को तो रह रह के वो बातें याद आती हैं कि वो उस वक्त में इसने ये किया था, उस वक्त में इसने ऐसे किया था, और मुझे तो भूलता नहीं है। अल्लाह हू अकबर। और इंसान बाज दफा इसी में अपनी सारी जिंदगी बिता देता है, कुड़ने में, जलने में, सिसकने में, वो अंदर ही अंदर लावे पक रहे होते हैं, इंसान बीमारियां लगा लेता है। इंसान किस हद तक पहुंच जाता है ये कुड़ कुड़ के, कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ये बुरा किया। क्या वाकई जिंदगी जब गुजर जाएगी तो हम अपने आप को पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमने क्या इस जिंदगी में किया, या क्या हमने कोई मकसद अपनी जिंदगी का हासिल किया या नहीं, या क्या हमने पाया क्या नहीं, तो क्या नजर आएगा। बस मैं सारी जिंदगी मैं तो गमों में ही पकती रही, खपती रही और कुड़ती रही, तो क्या जिंदगी इसके लिए मिली थी। ये बहुत पते की बात है, इसको हाईलाइट कर लें, फला तब इस बीमा का अनु या मालूम, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको सताएगा, और अक्सर रिश्तेदारों में ही ऐसा होता है, क्योंकि दोस्त है, अगर सता भी दें तो आप उनको छोड़ के दूसरे दोस्त बना लेते हैं। तो रिश्तेदारों में ये चीज बहुत कॉमन है, और अक्सर लोगों को शिकायत अपने रिश्तेदारों से ही होती है कि ये हमारे साथ ऐसे करते हैं। तो ऐसे मौके पे इंसान ये सोचे कि इतना कुछ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इनके भाइयों ने किया, क्या किसी को मारने की भी तदबीर किसी ने की हो? वो तो जाके कुएं में, अंधे कुएं में फेंक आए थे एक छोटे बच्चे को, मासूम को, जिसका कसूर भी कुछ नहीं। मारा तो हो सकता है वो कसूर ही हो ना किसी के साथ, तो हमारे दर पे हो गया, लेकिन वहां पे तो कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे का क्या कसूर हो सकता। फिर भी उनकी पूंजी उनको वापस कर रहे हैं कि मैंने नहीं लेना अपने भाइयों से, फिर भी अपने भाई को कह रहे हैं बना के उसके साथ बैठ जाएं, और आप पूरी रात बातें करते रहे। अच्छा फिर बताओ कि क्या हुआ, इन्होंने तुम्हारे साथ क्या करते थे? अच्छा ये करते थे तुम्हारे साथ? फिर वो भी अपने गम सुनाते, ये सुनते, वो रोते, ये उनको तसलियां देते, फिक्र ना करो मैं अभी इनसे निपटूंगा। हम तो ऐसे ही करते ना, फिर वो बहुत दिन बाद किसी से फिर मिले, अपने प्यारों से किसी से मिले, तो फिर हम वो फिर सारे गमों की दास्तानें लेके बैठ जाते हैं, पिछले अगले सारे साल हा साल के, फिर पूरी पूरी रात यही बातें चलती हैं कि हाय ऐसे हो गया, इसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। अल्लाह हू अकबर। तो हम उन लोगों को तो नहीं शायद बदल सके जो सताने वाले हैं, या जिनकी नेचर ऐसी है कि वो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, उनकी जिंदगी की एक्टिविटीज ही यही हैं। लेकिन हम खुद तो कम से कम इससे निकल सकते हैं, और अपनी जिंदगी को पॉजिटिव कामों में गुजार सकते हैं, वरना रो रो के ही चले जाएंगे यहां से, और होना कुछ भी नहीं है, किसी ने ठीक नहीं हो जाना हमारे करने से। कभी ये गम होता है, उसने मुझे ठुकरा दिया, उसने मेरी भलाई का ये बदला दिया, उसने मेरे साथ ये सलूक किया, मैंने उसके साथ क्या किया और इसने क्या किया। तो ये हम में से अक्सरियत के यही गम होते हैं। तो फला तब इस बीमा कानू या मालूम, तो ये गम जो है ना, ये अगर इंसान पाल ले ना, इनका भी पालना होता है, ऐसे ही नहीं, ये लफ्ज बड़े रेलिवेंट है, कहते ना गम पाल लिया, वाकई हम पालते हैं उसको, पाल पाल के ही उसको परवान चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो तो अगर नहीं पालेंगे उसको तो खत्म ही हो जाएगा। तो हम बड़े प्यार से उसको पालते हैं अपने दिल में, बार बार जिक्र करके, बार बार उसी के ऊपर रो रो के, बार बार उसी को याद कर करके, तो वो जो हम पालते रहते हैं ना, तो फिर उसकी वजह से हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है कुछ भी पॉजिटिव काम करने की। हम क्या पॉजिटिव काम करेंगे, हम अपने ही गमों के अंदर पड़े हैं, हम अपना ही वो, बस हमारा अपना ही रोना खत्म नहीं होता, तो हम उठ के क्या कोई काम कर सकेंगे, किसी की क्या मदद करेंगे, किसी के क्या काम आएंगे, कोई जिंदगी में पॉजिटिव काम कैसे करेंगे, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी। लिहाजा अगर वाकई इस जिंदगी को बामकसद गुजारना है ना, तो ये एक नुस्खा है उसका। फला तब तब इस बीमा कानू या मालूम, हो सकता है कि दूसरा जब देखे, हो सकता है जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है दूसरा जब देखे कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो घुल ही नहीं रही अब गम में, तो वो खुद ही चला जाए और हट जाए इस काम से। और नहीं भी हटता तो कम से कम इंसान खुद तो किसी पॉजिटिव चीज की तरफ लगे। तो ये डिप्रेशन से एक निकलने का भी तरीका है कि उस चीज के ऊपर गम ना करो जो वो अमल करते रहे। और जब इंसान ये सोच लेता ना कि एक दिन जरूर आना है जिसमें हर एक को उसका बदला मिलेगा, चाहे एक जानवर ही क्यों ना है, उस जानवर ने भी दूसरे के साथ अगर ज्यादती की है, अगर बेसींग वाली बकरी को भी सींग वाली बकरी ने मारा है, अल्लाह इतना करीम इतना अदल वाला कि उसको भी इंसाफ दिला देगा, तो क्या मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा? क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या मेरा केस ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? किसी ने चुभती भी बात आपको चाहे कर दी, किसी ने आपको कोई ताना मार दिया, किसी ने आपके कोई कोई दुख पहुंचा दिया, क्या वो ऐसे ही चला जाएगा? छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उस दिन ऐसे ही लेट गो कर दी जाए। तो इंसान ये बात को अगर समझ लेना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। मगर इसी चीज को तो शैतान भुलवा के इंसान को गमजदा हर वक्त रखता है। हर वक्त नाराज नाराज रहते हैं हम, हर वक्त हम चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि वो गम जो हमने पाले होते हैं। अल्लाह अकबर। और इसमें फिर अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस डिप्रेशन और इस गम को दूर करे। और शैतान तो इंसान को गमगीन ही रखना चाहता है, कभी नहीं चाहता कि वो गमों से निकले। उसको पता है गम से निकलेगा तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो कुछ काम करेगा। और इसको बिठा ही दो, देखिए गम इंसान को बिठा देते हैं, बिल्कुल उठने नहीं देते। फिर अल्लाह ताला हर गम और हर परेशानी और हर फिक्र से हम सबको महफूज रहे। दुआ भी अल्लाह मनी आजवी का मिनर हमी वल हुजन, ये दुआ भी है, इसी वजह से है। हम और हुजन इंसान को बिल्कुल बेकार कर देते हैं।